का बंधन भक्त और विश्वत बंद यहाँ पर पधारे हैं, उनके अपराधिक जीवन चरित्र के संबंध में, उनकी शिक्षाओं के संबंध में आज इन लोगों के मुख से हम लोग लघुत मुस्तानी जीवन में हम लोग श्रवण करते हैं। इसलिए आज इस विद्वत सभा में आज हम प्रस्ताव करते हैं कि राधा रमण धीरे के उनके विशेष सेवाई विद्वान और सब प्रकार के योग्य रसिक तत्वज्ञ वैष्णव लघुत को स्वामी गौर कृष्ण गोस्वामी जी हमारे इस सभा के सभापति हैं। मैं समर्थन करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग आपको प्रधान अतिथि के रूप में ग्रहण करते हैं।
विद्वत मंडली संत मंडली एवं वैष्णव मंडली
रूप गोस्वामी पाद के इस उत्सव के अवसर पर आज हम सब समवेत हुए हैं कि महाराज जी की स्वामी जी की मेरे ऊपर विशेष रूप से अनुग्रह कृपा रही है प्रदान में। श्री रूप गोस्वामी पाद के महिमा के ऊपर जितना भी कहा जाए वो अपने आप में अत्यंत अल्प ही होगा। श्री गौरहरि प्रेम के वह सरोवर हैं जिस सरोवर से अनेक अनेक नदियां कृपा की प्रवाहित हुई। जैसे किसी सरोवर से ही सरयू प्रभृति अनेक नदियां निकलती हैं, ऐसे श्री महाप्रभु के द्वारा कृपा की अनेक वन्याएं प्रवाहित हुई। महाप्रभु के अपूर्व दिव्य स्वरूप गौरहरि का जो स्वरूप है वह स्वरूप श्री राधा कृष्ण वांछा पूर्ति करने वाला स्वरूप है। कृष्ण स्वरूप के द्वारा तो श्री कृष्ण स्वयं अपनी वांछा पूर्ति करने में असमर्थ रहे और उनकी तीन अभिलाषाएं बड़ी प्रसिद्ध रही। अंतरंग अभिलाषाएं जो अभिलाषाएं श्री गौर स्वरूप में पूर्ण हुई राधा श्री राधा प्रणय महिमा की दूसरों वाले इत्यादि, परंतु श्री गौर स्वरूप श्री किशोरी जी की अभिलाषा को भी पूर्ण करने वाला स्वरूप। कृष्ण अभिलाषा को तो पूर्ण करने वाला है ही, परंतु यह गौर स्वरूप श्री किशोरी जी की अभिलाषा को भी पूर्ण करने वाला कोई अपूर्व दिव्य स्वरूप है। श्री स्वामी के हृदय में बहुत दिनों से यह अभिलाषा रही कि कब वह अवसर हो जब मैं उन्मत्त होकर के गली गली में प्यारे का नाम लेती हुई श्री कृष्ण नाम ग्रहण करते हुए आनंद पूर्वक निसंकोच विचरण कर सकूं। वो अभिलाषा परम मर्यादित होने के कारण श्री राधा स्वरूप में परिपूर्ण नहीं होती। वहां बड़ी अभिलाषा रही कि कब वो अवसर हो जबकि प्यारे के सारे ताप को मैं स्वयं सहन कर लूं। और वो अभिलाषा परिपूर्ण हुई जब गौर वन्या में वह कृष्ण गजराज निमज्जित हो गया, जब श्री राधा कांति ज्योति में श्री श्यामचंद्र स्वयं निमज्जित हो गए तो श्री किशोरी की वहां अभिलाषा पूर्ण हुई। महाप्रभु जिस समय पछाड़ खाकर के गिरते हैं उस समय श्री किशोरी जी भी उनके संपूर्ण ताप उनके संपूर्ण उत्ताप उनके संपूर्ण श्रम को अपने ऊपर सही कर लेती हैं। ये है श्री किशोरी जी की अभिलाषा, जो अभिलाषा जिसको वे दान कर सकने में स्वयं समर्थ नहीं हुई। श्री कृष्ण जरा लोभी हैं, वैश्य जाति है गोप जाति जरा लोभी होती है। मुक्ति दलाल कंचित मन भक्ति योगम, मुक्ति दे देते हैं भक्ति योग नहीं देते, थोड़ा खींच करके रखते हैं नाप तोल करने लगते हैं, जरा सा देखने लगते हैं तोड़ने लगते हैं कि हाँ कुछ है या नहीं। जब अधिकारी जानते हैं सब देते हैं। कृष्ण बड़े लोभी हैं। हमारी किशोरी जो हैं तो बड़ी उदार
परंतु उदार होने पर भी हैं जरा रेवड़ी बांटने वाले, जो उनका अपना परकर है रेवड़ी केवल वहीं वहीं बढ़ती है, हर एक को नहीं मिलती है। जो श्री किशोरी जी के अंतरंग सखी रहे हैं, जो उस परिकर में है, उनको तो वहां उस रस का अपनी सखियों के सामने तो उस रस का पूरी तरह परवेषण कर देती हैं, बल्कि उस रस का मूल आस्वादन करने वाली ही वे सखी गण हैं। सखी बिना यही रस से पुष्टि नए हो, सखी रस आस्वादी है, सखी विस्तार है, सखियों के बिना इस रस का विस्तार नहीं है। परंतु श्री किशोरी जी देती हैं केवल अपनी सखी गणों को, हरेक को वे भी नहीं दे सकती। परंतु जब वे ही से गौर स्वरूप में विराजमान हुई, तब यह गौर स्वरूप श्री किशोरी जी की अभिलाषा को भी पूर्ण करने वाला हुआ, और यह गौर स्वरूप श्री श्यामचंद्र की अभिलाषा को भी पूर्ण करने वाला हुआ। श्री किशोरी के परम उदार होकर के भी केवल अधिकारी अपने परिकर को ही उस रस का समर्पण कर सके। वे अपने परिकर के बीच में तो परम रसिक रूप में, परम मधुर रूप में उस रस का व्याख्यान करने वाली हुई, परंतु किसी दूसरे के आगे उस रस का उन्होंने व्याख्यान नहीं किया। यदि हमारी दृष्टि से देखा जाए तो हम यह कहेंगे कि कृष्ण परिकर, श्री किशोरी जी का परिकर हमारे लिए मूंग है, हमारे लिए वह गूंगा है। मुझे वाचाल का दोष न लगे, श्री किशोरी जी किसी तैनात में क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं ये कहूंगा, उल्हाना देते हुए, कि श्री किशोरी जी हमारे लिए बड़ी मूंग रही, हमारे लिए वे कृष्ण और कृष्ण परिकर लीला परकर हमारे लिए गूंगा है। हमसे बोलने वाला नहीं है, हमसे बोलने वाला जो परकर है वह परकर है श्री गौड़ परकर। जो लीला परकर वहां पर केवल लीला परकर के साथ में बातचीत करता है, वही लीला परकर जिस समय श्री गौरहरी के परकर के रूप में अवतरित होता है, जब श्री रूप मंजरी रूप गोस्वामी के रूप में अवतरित होती हैं, तब वे वाचाल होती हैं, जो गोगा हैं, जो बोल नहीं रहे हैं, वे यहां पर आकर के वाचाल हो जाते हैं। और वाचाल ही नहीं हो जाते हैं, बल्कि वे अनधिकारियों को भी अधिकार संपादित करते हैं। वहां पर तो अधिकार का विचार होता है, परंतु श्री रूप गोस्वामी पर अनधिकारियों को भी अधिकार संपादित करते हैं। जो कोमल श्रद्धा वाले हैं उनको वे दृढ़ श्रद्धा वाले बनाते हैं, जो दृढ़ श्रद्धा वाले हैं उनको अति दृढ़ श्रद्धा वाले बनाते हैं, जो हीन अधिकारी हैं उनको वे मध्यम अधिकारी बनाते हैं, जो मध्यम अधिकारी हैं उनको मध्यम अधिकारी पद से उठा करके उनको उत्तम अधिकारी पद अधिकार संपत्ति प्रदान करते हैं। ये अधिकार संपत्ति प्रदान करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो श्री रूप मंजरी में नहीं है। यह सामर्थ्य होगी उनमें, वे अपनी सामर्थ्य को अपने भीतर छिपाए हुए अपनी सामर्थ्य को प्रकट नहीं कर रहे हैं। पान श्री रूप मंजरी जिस समय रूप गोस्वामी होकर के प्रकट होते हैं, उस समय उस सामर्थ्य को वे अपूर्ण रूप से प्रकाशित करते हैं। अतः हमारे लिए उपयोगी यदि कोई है तो वे श्री रूप मंजरी नहीं, हमारे लिए उपयोगी श्री स्वामिनी नहीं, हमारे लिए उपयोगी हैं श्री महाप्रभु, हमारे लिए उपयोगी हैं श्री महाप्रभु का परकर, जो कि अनर्पित चरी भक्ति को प्रदान करते हैं। श्री किशोरी जो अनर्पित चरी भक्ति को प्रदान नहीं कर सके, श्यामचंद्र अनर्पित चरी भक्ति को प्रदान नहीं कर सके, जब वे गौर हरि होकर के आए और गौर हरि का परकर होकर के आया, तब वह अनर्पित चरी भक्ति को प्रदान करता है। कहीं कोई व्याख्या करे तो यह कर सकता है कि गौरिया भावम भावः गौरम, श्री किशोरी जी का जो भाव है वह है गौर, गौरी का जो भाव, उस भाव को ही हम कहेंगे गौर। और गौरी का जो भाव है, उस भाव का भी जो हरण करे वह है गौर हरि। यदि चोर अपने स्वरूप में आए तो वह उतना भयानक नहीं होता, उतना खतरनाक नहीं होता। यदि वह चोर देश बदल करके आ जाए, रंग बदल करके आ जाए, तो वह चोर जितना भयानक हो सकता है ऐसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। गौरस चौरह पर करते हैं, बोले सावधान, ये गौर रूपी चोर ऐसा है जो तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे सारे लोक वेद सब धर्मों का एक क्षण में यदि हरण करने वाला यदि कोई है तो यह महा डाकू, यह महा चोर है। इससे बढ़कर के कोई दूसरा चोर नहीं हो सकता है, इससे बढ़कर के कोई दूसरा डाकू नहीं होता है। वो गौरव चौरा, वो गौर चोर संपूर्ण संपूर्ण वस्तुओं का हरण करने वाला है। श्री गौरी के भाव का हरण करने वाला हरि शब्द जो है वह हरण के अर्थ में ही हरि शब्द की प्रसिद्धि है। हरे महामंत्र की व्याख्या में हर चीज हरा प्रोक्ता सत्या संबोधन में हरे इत्यादि रूप में हरे शब्द की जो व्याख्या की गई वो श्री किशोरी जी के, वो श्री श्यामचंद्र के चित्त को हरण करने वाली, उसी अर्थ में श्री हरे शब्द की व्याख्या की। हरे शब्द का मुख्य अर्थ है जो संसार के संपूर्ण तापों को हरण करे और भक्त के चित्त को भी कृष्ण प्रेम के द्वारा, अपनी कृपा बल के द्वारा भक्त के चित्त को भी अपने रूप गुण और प्रेम माधुर्य से सहज में हरण कर ले, वो है हरि शब्द का मुख्य। हरि शब्द का हरण करने वाला यही अर्थ मुख्य है, मनोहर अर्थ में। और संसार के जितने भी दुख हैं उन दुखों को हरण करने में यही हरि शब्द के दो मुख्य अर्थ हैं, मुख्य अर्थ हैं। और गौर हरि होकर के यहाँ पर गौरी की केवल, गौरी की केवल कांति का ही हरण नहीं करते हैं, गौरी के भाव का भी हरण कर लेते हैं। जहाँ पर आश्रय स्वरूप होकर वे श्री श्यामचंदर स्वयं विषयानंद का स्वयं आस्वादन करते हैं, आश्रय आलम्बन होकर विषयालंबन का जो आस्वादन करने के लिए जब श्री श्यामचंदर विराजमान होंगे तो उनसे बढ़कर के कोई दूसरा आस्वादन हो नहीं सकता। और श्री श्यामचंदर के उस आस्वादन को, गौर हरि के उस आस्वादन को यदि हमें प्राप्त करना है तो वह प्राप्त किया जा सकता है श्री चैतन्य मनोहीष्टम आत्मेर चले, जिनमें श्री गौरहरि के मनोहीष्ट को कृपा करके संसार में स्थापित किया, उन श्री रूप के आश्रय के द्वारा ही उन श्री गौरहरि का आस्वादन प्राप्त किया जा सकता है, गौरहरि के मनोहीष्ट को कहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी दूसरे प्रकार के अनिष्ट को प्राप्त नहीं किया। श्री रूप गोस्वामी पाठ अपूर्व रूप से श्री महाप्रभु के मन के अभीष्ट भाव को सर्वत्र सर्वत्र प्रकाशित करते हैं। अतः हमारी जो साधना वह श्री रूपानुगत साधना ही है, कृष्ण तद्भक्त कारुण्य मात्र लाभ ही के हेतुता पुष्ट मार्ग से या कहीं प्रेम रागानुगत, ये जो रागानु का मार्ग है वो कृष्ण और कृष्ण भक्तों की कारण कारुण्य के बल पर ही चलने वाला है। यह मार्ग श्री गौरहरि की करुणा पर ही एकमात्र चलने वाला है, किसी दूसरे प्रकार से चलने वाला नहीं है। श्री गौरहरि के भक्तों के हृदय में जो भाव विराजमान है उस भाव को यदि उनका अनुगत ग्रहण किया जाए तो उस अनुगत के द्वारा श्री गौरहरि की कृपा और गौरहरि की कृपा के साथ साथ श्री कृष्ण की कृपा दोनों ही प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। श्री भागवत सुंदरम के अंत में सनातन गोस्वामी पाद श्री जीव गोस्वामी पाद निरूपण करते हैं, बोले श्री गौर वह कल्पवृक्ष हैं जिस कल्पवृक्ष के भीतर श्री राधा कृष्ण मिथुन विराजमान, वृक्ष के भीतर पक्ष मिथुन है, पक्षी मिथुन के भीतर वृक्ष नहीं है, वृक्ष के भीतर पक्षी रहता है, पक्षी का जोड़ा वृक्ष के भीतर रहता है, पक्षी के भीतर वृक्ष नहीं रहता है। इसी प्रकार जहां गौर आराधना है उस गौर आराधना के अंतर्गत श्री राधा कृष्ण आराधना अपने आप सहज रूप से प्राप्त हो जाएगी, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। कल्पवृक्ष का ये ध्यान करेंगे तो कल्पवृक्ष में विराजमान पक्षी द्वय उनकी आराधना अपने आप हो जाएगी, वे अपने आप समाहित हो जाएंगे, अंतर्भुक्त हो जाएंगे, अंतर्निहित हो जाएंगे। परंतु केवल पक्षी का ध्यान करेंगे तो वृक्ष अंतर्भुक्त नहीं होगा, कल्पवृक्ष अंतर्भुक्त नहीं होगा। श्री गौरहरि की कृपा के भीतर, श्री गौरहरि के गौर लीला के भीतर कृष्ण लीला समाहित हो जाएगी, पर कृष्ण लीला में केवल कृष्ण लीला रह जाएगी, उसका सम्यक प्रकार से आस्वादन नहीं हो सकेगा। श्री श्याम सुंदर का जो आस्वादन है वह विषयगत आस्वादन है, और वह विषयगत आस्वादन हम साधकों के लिए उपयोगी नहीं होता। श्याम सुंदर रस के विषय है, श्री प्रिया जी ब्रज गोपिका के रस के आश्रय है। श्याम सुंदर जो श्री प्रिया जी के प्रेम का आस्वादन प्राप्त कर रही है वह आस्वादन तत्वतः श्री प्रिया जी के प्रेम से सोपाधिक होकर के ही विराजमान है, वह निरुपाधि नहीं है। तत्वतः तो श्री श्याम सुंदर आत्माराम पूर्ण काम है, जो आत्माराम पूर्ण काम है उसे यदि कोई नचाने वाला है तो वह धाम है, वह परकर है, वह काल है। शिवृंदावन का अपूर्व समय, कैशोर अवस्था, शिवृंदावन धाम और शिवप्रिया भगवान के तारात्रि विक्रम को मन चक्रे, और तारक में श्री प्रिया प्रियाओं का प्रेम और उद्दीपन रूप शिवृंदावन और कैशोर अवस्था, तो उद्दीपन रूप में कैशोर अवस्था, उद्दीपन रूप में श्री वृंदावन और आश्रय आलम्बन रूप में श्री प्रियाओं का प्रेम, ये तीन वस्तुएं ही श्री श्याम सुंदर के हृदय में रंग मन सक्रे रमण करने की अभिलाषा उत्पन्न करती हैं। श्याम सुंदर में अपने आप अभिलाषा नहीं है, श्याम सुंदर की जो अभिलाषा है उस अभिलाषा को उत्पन्न करने में, रमण की अभिलाषा को उत्पन्न करने में कारण है श्री किशोरी जी का प्रेम। यदि कृष्ण सामने प्रेम है, आश्रय में प्रेम है तो कृष्ण में प्रेम उत्पन्न होगा, आश्रय में प्रेम नहीं है तो कृष्ण में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। यस्येन्द्रियं विमत्तुम कोकैव सेतुः प्रमाण, इसका जो महर्षिगण है यदि उन महर्षिगणों में कभी प्रेम नहीं है और वे महर्षिगण केवल हाव भाव हेला के द्वारा श्री कृष्ण को विमोहित करना चाहें तो श्री कृष्ण विमोहित नहीं होते। यस्येन्द्रियं विमत्तुम कोकैव सेतुः, वे प्रियागण कुह के द्वारा श्री कृष्ण को विमोहित कर सकने में समर्थ नहीं है। अतः कृष्ण प्रेम, कृष्णगत जो प्रेम है वह कृष्णगत प्रेम स्वाभाविक है, कृष्णगत प्रेम निरुपाधि नहीं है। उस कृष्णगत प्रेम को उत्पन्न करने में श्री वृंदावन धाम कारण है, धाम की शोभा का दर्शन करके, सर्वोत्फुल्ल मल्लिका का दर्शन करके कृष्ण में प्रेम उत्पन्न होता है, अपने आप प्रेम नहीं है। प्रियाओं के प्रेम का दर्शन करने के कारण श्याम सुंदर में प्रेम उत्पन्न होता है, श्याम सुंदर में अपने आप प्रेम नहीं है, प्रियाओं का प्रेम श्याम सुंदर को नचाने वाला है, अन्यथा वे तो निज स्वरूप में आत्माराम पूर्ण काम है। परंतु हमारी प्रिया ऐसी नहीं है, हमारी श्री स्वामी, हमारी श्री किशोरी जी, मेरी जो मदीशा नाथत्व, मेरी जो स्वामी है, ये स्वामी ऐसी नहीं है। उन स्वामी में प्रेम स्वतः विद्यमान है, उन वे प्रेम की स्वरूपा होकर के विराजमान है, वे मागना के महाभावत स्वरूपा है, वे प्रेम स्वरूप है, कृष्ण प्रेम स्वरूप नहीं है, कृष्ण भाव स्वरूप है, कृष्ण में प्रेम का उसका विस्तार नहीं है, परंतु महाश्री प्रिया महाभावत स्वरूपा होकर के विराजमान है। अतः हम क्योंकि शक्ति स्थानीय है, तटस्थ रूप है, हम आश्रय स्थानीय है, हम में आश्रयगत प्रीति हो सकती है, हम में विषयगत प्रीति नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण का स्वामी के प्रति जो प्रेम, वह हमारे लिए उद्दीपन का कार्य तो कर सकता है, परंतु वह हमारा कभी भी अभिष्ट नहीं हो सकता। श्री राधिका का, राधिका के प्रति श्याम सुंदर का जो प्रेम है, हम क्योंकि श्री राधिका दासी हैं, हमारी स्वामी के प्रति आज उन जगत के अनंत अनंत कोटि के अधिकृत श्री श्याम सुंदर का उन राधिका के प्रति इतना भारी प्रेम है, यह बात हमारे हृदय में प्रेम को उद्दीप्त कर सकती है, परंतु वह हमारे द्वारा स्वीकार्य नहीं हो सकती है। हम स्वयं श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण के साथ में हम एक ही भाव प्राप्त करके हम साधारणीकृत होकर के उस प्रेम का आस्वादन नहीं कर सकते हैं। हमारा जो साधारणीकरण होगा वह साधारणीकरण होगा श्री किशोर जी के साथ ही मुख्यतः, क्योंकि हम स्वयं आश्रय हैं और जो आश्रय है वह आश्रयगत भाव के साथ में तो अपना साधारणीकरण कर सकता है, जो विषयगत भाव है उस विषयगत भाव के साथ में हमारा साधारणीकरण नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए उपयोगी है श्री श्याम सुंदर नहीं, हमारे लिए उपयोगी है श्री राधिका का श्री श्याम सुंदर के प्रति प्रेम, परंतु वह राधिका प्रेम भी हमारा सत्वतः साथी नहीं है। श्री राधिका प्रेम का भी परिपूर्ण रूप से यह आस्वादन कहीं प्राप्त है तो वह आस्वादन राधिका की अपेक्षा सत्कोटि अधिक सहस्रकोटि अधिक आस्वादन प्राप्त है उनकी सखी नहीं। नायिकागत जो आस्वादन है वह नायिकागत आस्वादन की अपेक्षा सखियों का जो आस्वादन है वह सखियों का आस्वादन कहीं अधिक बढ़ करके है, क्योंकि श्याम सुंदर आस्वादन कर रहे हैं श्री किशोरी जी का, श्याम सुंदर का किशोरी जी का जो आस्वादन है वो नायक रूप में हमारे किसी काम का नहीं, वह केवल उद्दीपन रूप में ही हमारे काम का है। श्री किशोरी जी श्याम सुंदर का आस्वादन प्राप्त कर रही है वह आस्वादन भी हमारा उपयोगी है, परंतु उस वह आस्वादन हमारे लिए अधूरा है, क्योंकि उसमें केवल श्याम सुंदर का ही आस्वादन हमको प्राप्त होगा। उसमें प्रिया की सौंदर्य का आस्वादन श्री स्वामी के सौंदर्य का जो आस्वादन है वह हमको प्राप्त नहीं होगा, परंतु सखी रूप में जो आस्वादन है उस सखी रूप के आस्वादन में हमको श्याम सुंदर के माधुर्य और सौंदर्य दोनों के आस्वादन की भी प्राप्ति होगी, श्री किशोरी जी के श्याम सुंदर के प्रति जो सौंदर्य है उसकी भी प्राप्ति होगी। तो नायक आश्रयगत और विषयगत दोनों आस्वादनों का यदि हमें एक काल में आस्वादन प्राप्त करना है तो वह आस्वादन सखी गणों को ही प्राप्त है। सखी गणों में श्री कृष्ण के भाव को उद्दीपन रूप में ग्रहण करने की सामर्थ्य भी है और श्री स्वामी के भाव के साथ में स्वामी की कायव्य रूपा होने के कारण वे स्वामी के साथ में तादात्म्य प्राप्त करके भी उस रस का आस्वादन प्राप्त कर सकते हैं। उन सखियों के आस्वादन से भी बढ़कर के अधिक आस्वादन की प्राप्ति है वह है मंजरी स्वरूप में आस्वादन की प्राप्ति, क्योंकि वहां पर सखियों को जो सुख की प्राप्ति है उस सखियों के सुख की भी प्राप्ति है, श्री स्वामी का शख श्याम सुंदर का दर्शन करके जो सुख की प्राप्ति हो रही है उस सुख की भी प्राप्ति है, और श्री श्याम सुंदर को भी स्वामी का दर्शन करके जो सुख की प्राप्ति हो रही है उस सुख का भी उद्दीपन रूप में आस्वादन प्राप्त है। इस प्रकार उद्दीपन रूप में श्री श्याम सुंदर के सुख की प्राप्ति और स्वयं स्थायी भाव के रूप में श्री किशोरी जी का श्याम सुंदर के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम की प्राप्ति, श्री सखियों में जो प्रेम विद्यमान है उभयगत सुख उस उभयगत सुख का अनुभव और उस सुख से भी मंजरी सुख से भी अधिक सुख की प्राप्ति है मंजरियों का आनुगत्य ग्रहण करके प्राप्त होने वाले सुख में। अतः वो जो सुख है वह सुख ही सर्वश्रेष्ठ सुख है। अतः आचार्य निरूपण करते हैं न भाव मंजरी हुआ भावा अन्य भूया मम क्वचित इतम स्वगुरु यासे स्वप्रभु से मुहुर् न मुख्याद सहाकृत्य न ज्ञान कर्मयोरपि किंतु प्रेमामृतताम कामये साधु संगति। श्री कृष्ण को प्रसन्न करके यदि कोई वस्तु मांगने योग्य है तो वह कृष्ण कृपा मांगने योग्य नहीं है, कृष्ण को प्रसन्न करके यदि कोई वस्तु मांगने योग्य है तो वह है कि हमको संतों का संग प्राप्त, जहां संत संग प्राप्त हो जाएगा जहां गौर गण की कृपा प्राप्त हो जाएगी उस गौर गण की कृपा से प्राप्त करने पर श्री महाप्रभु की कृपा और उसके साथ साथ ही श्री राधा कृष्ण की कृपा ये दोनों सहज रूप में अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। श्री रूप स्वामी पाद के उस चैतन्य मनोभीष्ट को इस तरह से उन्होंने प्रकट किया और वो जैसे एक साधक के लिए एक नीचे पड़ा हुआ हम सभी के जो कीड़े मकोड़े हैं उन कीड़े मकोड़ों के लिए जितना उपयोगी है ऐसा किसी दूसरे के लिए नहीं है। हम सभी के कीट भृंगों के लिए जिनमें कोई साधन बल नहीं है, उन साधन बलहीन जनों के जनों को भी जो अधिकार संपत्ति प्रदान करें, जो श्री भक्ति के जितने भी जो हीन अधिकारी हैं उनको मध्यम और मध्यम को उत्तम अधिकारी बनाने की परस मणि न्याय से सामर्थ्य रखते हैं, तो श्री रूप गोस्वामी के श्री शरणागति की वंदना कौन नहीं करेगा। अब श्री रूप गोस्वामी के